नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा में विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 पारित। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार ने मनरेगा योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारतीय प्रवासी समुदाय सा अस्तित्व और सहयोग का जीता जागता उदाहरण। श्री मोदी ने ओमान के मस्कत में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। भारत और ओमान आज बहुप्रतीक्षित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित किया। दिल्ली में बिना प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को आज से पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी आज चीन के हंगझोउ में बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर फाइनल के क्वार्टर फाइनल में खेलेगी। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण जी राम जी विधेयक 2025 पारित कर दिया है। एक रिपोर्ट।
इस विधेयक का मकसद विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप गांव का समग्र विकास करना है। गांव में हुए सामाजिक आर्थिक बदलावों को देखते हुए केंद्र सरकार विकसित भारत जी राम जी विधेयक लेकर आई है। नए विधेयक का उद्देश्य श्रमिकों को अधिक कार्य दिवसों की गारंटी, बेहतर मजदूरी और सुरक्षा प्रदान करना है। मनरेगा के तहत फिलहाल एक वित्त वर्ष में 100 दिन के काम की गारंटी दी जाती है। वहीं नए विधेयक में हर साल 125 दिन का रोजगार मिलेगा। यह विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप ग्रामीण विकास की गति को और बढ़ावा देगा, साथ ही रोजगार के अधिक अवसर प्रदान कर ग्रामीण परिवारों को सशक्त बनाएगा। यदि 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो विधेयक में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार,
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मनरेगा योजना को उचित और प्रभावी ढंग से लागू किया गया है।
हम पैसा बचाना नहीं चाहते, हम रोजगार देना चाहते हैं, गांव को विकसित बनाना चाहते हैं। इसलिए इसी साल बजट में प्रस्तावित है 1,51,282 करोड़ रुपया। और ये रुपया कहाँ जाएगा? ये मजदूरों को मजदूरी के लिए भी जाएगा, ये गांव के विकास के लिए भी जाएगा। अकेले भारत सरकार 95,600 करोड़ रुपया खर्चा करेगी।
श्री चौहान ने बताया है कि यूपीए सरकार के दौरान वर्ष 2006-07 से 2013-14 तक 1,760 करोड़ दिन का रोजगार सृजित हुआ, जबकि एनडीए सरकार के दौरान 3,210 करोड़ दिन का रोजगार सृजित किया गया है। श्री चौहान ने कहा है कि यूपीए के दौरान इस योजना में महिलाओं की भागीदारी केवल 48% थी, जिसे एनडीए सरकार के तहत बढ़ाकर 56% से अधिक कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि नया कानून सभी राज्यों को न्याय दिलाएगी। श्री चौहान ने बताया है कि इस योजना के तहत 60% धनराशि मजदूरी और 40% सामग्री के लिए निर्धारित है। केंद्र के मनरेगा में किए गए बड़े बदलाव को झारखंड के दुमका जिले के लोगों ने कल्याणकारी और ऐतिहासिक कदम बताया है। मनरेगा का नाम अब विकसित भारत जी राम जी किया गया है और इसमें रोजगार के अवसर बढ़ाए गए हैं। दुमका सदर प्रखंड की घाट रसिकपुर पंचायत की मुखिया प्रशिला हासंदा ने कहा है कि सरकार की इस पहल की प्रशंसा की और दुमका प्रखंड की दुधानी पंचायत के पंचायत सचिव नंदन कुमार ने कहा है कि इस विधेयक में मजदूरों के मुआवजे की प्रक्रिया भी सरल की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की विविधता इसके संस्कृति को मजबूत आधार बनाती है। प्रधानमंत्री आज ओमान की यात्रा के दूसरे दिन मस्कत में मैत्री पर्व कार्यक्रम में भारतीय समुदाय और छात्रों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि भारतीय प्रवासी सह अस्तित्व और सहयोग को जीता जागता उदाहरण प्रस्तुत करती है।
भारत में हमारी डायवर्सिटी हमारी संस्कृति का मजबूत आधार है। हमारे लिए हर दिन एक नया रंग लेकर के आता है, हर मौसम एक नया उत्सव बन जाता है, हर परंपरा एक नई सोच के साथ आती है। और यही कारण है कि हम भारतीय कहीं भी जाए, कहीं भी रहे, हम डायवर्सिटी का सम्मान।
ओमान में भारतीय शिक्षा प्रणाली के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मैत्री पर्व कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री ने मैत्री पर्व को समुद्री विरासत, आकांक्षाओं, नवाचार, विश्वास, प्रौद्योगिकी, सम्मान और समावेशी विकास के रूप में वर्णित किया है। उन्होंने कहा है कि मैत्री पर्व दोनों देशों की मित्रता, उनके साझा इतिहास और समृद्ध भविष्य का उत्सव है। इससे पहले आज सवेरे प्रधानमंत्री ने मस्कत में आयोजित भारत ओमान व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि यह शिखर सम्मेलन दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा और गति प्रदान करेगा। राजनयिक संबंधों के 70 वर्षों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये साझेदारी विश्वास और मित्रता पर आधारित है। उन्होंने कहा है कि अब ये साझा विरासत पर केंद्रित एक समृद्ध भविष्य की ओर अग्रसर है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मैत्री पर्व कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रदर्शनी केंद्र पहुंचे, जहां ओमान में रहने वाले भारतीय समुदाय ने उनका जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री को देखकर लोगों में प्रेम और उत्सव का माहौल था। ओमान में लगभग 7 लाख भारतीय रहते हैं। भारत के विभिन्न हिस्सों और इलाकों से आए प्रवासी भारतीयों ने नाचते गाते तथा नारे लगाते हुए उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ओमान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ओमान से राजेश बाली की रिपोर्ट।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की कम समय में उच्च प्रभावशाली के साथ अभियान चलाने की क्षमता दर्शाई है। नई दिल्ली में वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की वायु रक्षा प्रणाली और दूसरे उपकरणों के प्रभावी उपयोग की सराहना की और कमांडरों से भविष्य की चुनौतियों के लिए ऑपरेशन से सीख लेने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2029 तक रक्षा उत्पादन को दोगुना कर 3 लाख करोड़ रुपए करना है। नई दिल्ली में आज डॉ मांडविया ने कहा है कि देश में रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। परमाणु ऊर्जा मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज राज्यसभा में परमाणु ऊर्जा का स्थायी उपयोग और उन्नति शांति विधेयक 2025 प्रस्तुत की। लोकसभा के कल इस विधेयक को संशोधन में साथ पारित कर दिया था। एक रिपोर्ट।
इस विधेयक का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा और आयनीकरण विकिरण का विकास करना है। ये इसके सुरक्षित उपयोग के लिए एक मजबूत नियामक ढांचा प्रदान करेगा। इस विधेयक के माध्यम से परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के गठन और परमाणु ऊर्जा निवारण सलाहकार परिषद की स्थापना की जा सकेगी। ये विधेयक परमाणु दुर्घटना की स्थिति में केंद्र सरकार की जवाबदेही तय करने का भी प्रावधान करता है। केंद्र सरकार ने विधेयक के अंतर्गत अपनी जवाबदेही को पूरा करने के उद्देश्य से एक परमाणु जवाबदेही कोष स्थापित किया है। ये कानून बोर्ड को किसी भी रेडियोधर्मी पदार्थों और उत्पन्न करने वाले उपकरणों के निर्माण, उपयोग, निर्यात, आयात, परिवहन, हस्तांतरण को विनियमित करने में सक्षम बनाता है। विधेयक के तहत गठित सलाहकार परिषद केंद्र सरकार या AERB के आदेशों या निर्णयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करेगी। इसमें केंद्र सरकार को रेडियोधर्मी पदार्थों की सुरक्षा के लिए उपायों को निर्दिष्ट करने का अधिकार दिया गया है। यह केंद्र सरकार को यूरेनियम या थोरियम की खोज के लिए अन्वेषण गतिविधियां चलाने का भी अधिकार देता है। यह विधेयक परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम 2010 का स्थान लेगा। आदर्श के साथ
बैडमिंटन में भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी आज चीन के हंगझोउ में BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स के क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशिया के फजर अलीफान और मोहम्मद शोहिबुल फखरी का सामना करेंगी। भारतीय जोड़ी ने अपने अभियान की शुरुआत ग्रुप बी के पहले मुकाबले में चीन के यांग वांग और वेई केंग लियांग के खिलाफ जीत के साथ की थी। भारत और सऊदी अरब ने रियाद में द्विपक्षीय वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे आधिकारिक यात्राएं आसान होंगी और भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद के अंतर्गत द्विपक्षीय आदान प्रदान को बढ़ावा मिलेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 पारित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारतीय प्रवासी समुदाय सअस्तित्व और सहयोग का जीता जागता उदाहरण। भारत और ओमान आज बहुप्रतीक्षित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित किया। दिल्ली में बिना प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों का आज से पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।